लाउडेटर यीशु क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम आपसे अलग तरह से सक्षम लोगों के लिए याचना करते हैं, ताकि उनकी व्यथाओं पर समाज अपना ध्यान केंद्रित करे और समावेशी कार्यक्रमों द्वारा उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व प्रदान करे। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण में प्रस्तुत है बुधवार ये आम दर्शन समारोह में संत पापा फ्रांसिस की धर्म शिक्षा माला, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर अनुग्रह मिंज। श्रोताओं, संत पापा फ्रांसिस ने अपने बुधवारीय आम दर्शन समारोह के अवसर पर संत पापा पॉल षष्ठम के सभागार में उपस्थित सभी विश्वासियों और तीर्थयात्रियों को संबोधित करते हुए कहा,
फ्रेटेली सोरेले बोनजोर्नो, बेनवेनुती तुत्ती, anche oggi ho chiesto l'aiuto del monsignor Campanelli per leggere, perché ancora mi fatico, sto molto meglio ma
प्रिय भाइयों एवं बहनों, सुप्रभात और स्वागतम। उन्होंने कहा कि आज भी मैं मान्यवर कंपनेल्ली से सहायता की मांग करता हूँ। मैं ठीक हूँ, लेकिन अधिक बात करने से थकान होती है, अतः धर्म शिक्षा को वे पढ़कर सुनाएंगे।
Nelle scorse catechesi abbiamo visto che l'annuncio del Vangelo è gioia, è per tutti e va rivolto all'oggi।
अपने विगत धर्म शिक्षा में हमने सुसमाचार की घोषणा को एक खुशी की घोषणा कहा, जो सबों के लिए है और जो वर्तमान समय में होता है। अब हम इसके अंतिम खास विशेषता पर विचार मंथन करेंगे, जो हमें इसके घोषणा को पवित्र आत्मा में होने की आवश्यकता के बारे में कहता है। वास्तव में ईश्वर की घोषणा करना खुशी में विश्वास का साक्ष्य और वैश्विक स्तर पर इसका प्रचार करना अपने में काफी नहीं है। पवित्र आत्मा के बिना हमारे सारे उत्साह व्यर्थ और झूठी प्रेरिताई हो जाती है। यह केवल हमारा कार्य हो जाता जो फलदायक नहीं होता है। एवेंजेली गॉडियम में संत पापा हमें इस बात की याद दिलाते हैं कि यीशु सर्वप्रथम और सबसे बड़े सुसमाचार प्रचारक हैं, अर्थात सुसमाचार के हर क्रियाकलाप में हमारी प्रधानता ईश्वर होते हैं, जिन्होंने हमें अपने साथ सहयोग करने हेतु बुलाया है और वे हमें पवित्र आत्मा की शक्ति से आगे ले चलते हैं। यहाँ हम पवित्र आत्मा की प्रधानता को पाते हैं। यही कारण है कि ईश्वर स्वर्ग राज्य के आयाम को एक व्यक्ति से तुलना करते हैं जो अपने खेतों में बीज बोता है। जो रात और दिन सोता है, वही बीज उगता और कैसे बढ़ता है उसे पता नहीं चलता है। यहाँ हम पवित्र आत्मा को नायक स्वरूप पाते हैं। वे प्रेरिताई को आगे ले चलते और उसे फलहित करते हैं। यह ज्ञान हमें वृहद सांत्वना से भर देता है। यह हमें एक दूसरे मनोभाव से वाकिफ करता है। विशेषकर कलीसिया अपने उत्साह में स्वयं को घोषित नहीं करती है, बल्कि एक कृपा को, एक उपहार की घोषणा करती है, जहां हम पवित्र आत्मा को उस ईश्वरीय उपहार स्वरूप पाते हैं, जैसे कि यीशु उस सामारी नारी से कहते हैं। वहीं पवित्र आत्मा की प्रधानता हमें आलस्य की ओर अग्रसर ना करे। विश्वास हमें कार्य करने से वंचित रहने को न्यायसंगत घोषित नहीं करता है। बीज की उर्वरता किसान को यह अधिकार नहीं देती कि वह खेतों की चिंता ना करे। यीशु अपने स्वर्ग रोहण के पहले हमें यह निर्देश देते हैं, पवित्र आत्मा के आने पर तुम उसकी शक्ति से पोषित किए जाओगे और मेरा साक्ष्य विश्व के कोने कोने में दोगे। यीशु ने हमारे लिए ईश शास्त्रीय कार्य शैली या एक प्रेरिताई पर्चा नहीं छोड़ा है, बल्कि पवित्र आत्मा को दिया है, जो हम में प्रेरित कार्यों की प्रेरणा लाते हैं। वे साहसिक पहल हमारे अंदर उत्पन्न करते, जो हमें उनकी शैली में कार्य करने को अग्रसर करती है, जिसमें हम दो विशेषताओं सृजनात्मकता और सरलता को पाते हैं।
per annunciare Gesù con gioia a tutti e nell'oggi.
सृजनात्मकता में हम यीशु को खुशी में हर किसी के लिए घोषित करते हैं। हमारे समय में धार्मिक जीवन का दृष्टिकोण अपने में सहायक नहीं होता है। यह बहुत से स्थानों में सुसमाचार की घोषणा को कठिन, मुश्किल भरा, फलहीन बनाता है, जहां प्रेरिताई के प्रति हम एक तरह से अपने में उबाव के भाव उत्पन्न होता पाते हैं। हम शायद अपने लिए कोई आरामदायक स्थान का चुनाव करते हैं, जैसे कि किसी के द्वारा केवल रूटीन भरा कार्य किया जाना या कोई अपने को एक अंतरंग आध्यात्मिकता के आकर्षण तक सीमित रखता है, यहाँ तक कि धर्म विधि की केंद्रीयता के संबंध में एक तरह से गलत धारणा। यह हमारे लिए प्रलोभन बनते हैं जो परंपरा के प्रति निष्ठावान के भेष में हमारे लिए आते हैं, लेकिन बहुधा पवित्र आत्मा को प्रत्युत्तर देने के बदले वे प्रतिक्रियाएं बन सकते हैं जो हमारे व्यक्तिगत असंतोष के कारण होते हैं, जबकि हमें प्रेरित सृजनात्मकता पवित्र आत्मा में साहसी बनाता, प्रेरिताई की ज्वाला से ज्वलित करता जो हमारे लिए उनके प्रति निष्ठावान होने की निशानी बनती है। अतः संत पापा लिखते हैं,
जीसु क्रिस्तो può anche rompere gli schemi noiosi nei quali pretendiamo di imprigionarlo e ci sorprende con la sua costante creatività divina.
Yesu hamare sustipan ke roopon ko tod sakte hain jiske dwara hum unhe apne mein band karte hain. Ve hame nirantar apni divya srijanatmakta se aashcharyachakit karte hain. Jab kabhi hum sachche taazgi bhare susamachar ki or aate hain, एक नयापन हम में जागृत होता है। सृजनात्मकता की नई राहें खुलती हैं, जिसे हम विभिन्न रूपों में पाते हैं, जो शानदार निशानियों और शब्दों के रूप में वर्तमान दुनिया के लिए नए अर्थ को प्रकट करता है। सरलता के बारे में जिक्र करते हुए संत पापा ने कहा कि पवित्र आत्मा हमें विशेष रूप से स्रोत प्रथम घोषणा की ओर ले चलते हैं। वास्तव में यह पवित्र आत्मा की आग है जो हमें यीशु ख्रिस्त में विश्वास करने को अग्रसर करती है, जो अपने दुख भोग और पुनरुत्थान द्वारा पिता की अनंत करुणा को हमारे लिए व्यक्त करते और हमें प्रदान करते हैं। यह प्रथम घोषणा है जिसे सुसमाचार प्रचार के क्रियाकलापों का केंद्र बिंदु बनने की जरूरत है, जिसके फलस्वरूप कलीसिया में नवीनता के हर प्रयास होते हैं। हमें निरंतर यह घोषित करने की जरूरत है कि यीशु ख्रिस्त हमें प्रेम करते हैं।
Gesù Cristo ti ama, ha dato la sua vita per salvarti e adesso è vivo al tuo fianco ogni giorno per illuminarti, per rafforzarti, per liberarti.
उन्होंने हमें बचाने के लिए अपना जीवन दिया और वे अब हर रोज हमारी बगल में रहते और हमें ज्योति शक्ति से भरते हुए मुक्ति प्रदान करते हैं। भाइयों एवं बहनों, हम अपने को पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरित होने दें और रोज दिन उन्हें पुकारें। वे हमारे जीवन और हमारे कार्यों का आधार बने। वे हमारे हर कार्य, मिलन, संगोष्ठी और घोषणा के शुरुआतकर्ता बने। वे कलीसिया को खमीर से भरते और युवा बनाते हैं। उनमें हमें भय नहीं लगता क्योंकि वे एकता है जो हममें सृजनात्मकता और सरलता को सदैव बनाए रखते हैं। वे हममें एकता को बनाए रखते और प्रेरिताई हेतु भेजते हैं। वे भिन्नताओं के लिए हमें खोलते और पुनः एकता की ओर ले आते हैं। वे हमारी शक्ति हैं, सुसमाचार घोषणा की सांसें, उत्साह का उद्गम। पवित्र आत्मा हमारे लिए आइए। इस भांति संत पापा फ्रांसिस की धर्म शिक्षा माला समाप्त हुई और उन्होंने विश्वासियों और तीर्थयात्रियों के संग हे पिता हमारे प्रार्थना का पाठ किया और सबों को अपना प्रेरितिक आशीर्वाद प्रदान किया।
सी नोमेन डोमिने बेनेडिक्टम
एक्स होक नुंक एट उस्क्वे इन सेकुलम
एटेरी नोस्टुम इन नोमिने डोमिन
क्वि फेची चेलुम एट टेरा
बेनेडिक्टस वोस ओमनिपोटेंस देउस पातर Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Avanatma, Pavitra Atma, Akar Muchmi Vas Karna, Avanatma, Akar Muchmi. आप वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा पॉल षष्ठम हॉल में आयोजित बुधवार ये आम दर्शन समारोह में धर्म शिक्षा देने के बाद संत पापा फ्रांसिस ने उन लोगों के लिए एक नए विचार के साथ सभा का समापन किया जो उन संघर्षों के कारण पीड़ित हैं, जो दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों को प्रभावित कर रहे हैं और केवल हथियार निर्माता ही लाभान्वित होते हैं। हाल के दिनों में हुई ब्रोंकाइटिस से उबर रहे संत पापा फ्रांसिस ने दुनिया भर के तीर्थ यात्रियों के लिए धर्म सभा और अभिवादन को पढ़ने की जिम्मेदारी राज्य सचिवालय के अधिकारी मोनसिन्योर फिलिपो कंपानेली को सौंपा, लेकिन उन्होंने दुनिया में उन लोगों के प्रति अपनी निकटता व्यक्त किया जिन्हें शांति की आवश्यकता है। संत पापा ने कहा, आइए हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करना न भूलें जो युद्ध की त्रासदी से पीड़ित हैं, विशेष रूप से यूक्रेन, इसराइल, फिलिस्तीन की आबादी के लिए। युद्ध हमेशा हार होता है, कोई नहीं जीतता, हर कोई हारता है, केवल हथियार निर्माता ही पैसा कमाते हैं। संत पापा फ्रांसिस ने तीर्थ यात्रियों को अपने अभिवादन के दौरान पोलिश तीर्थ यात्रियों को संबोधित किया जो उल्मा परिवार को धन्य घोषित करने का समारोह मनाने के लिए रोम आए हैं। अगले रविवार को यानि आगमन के दूसरे रविवार को पोलैंड में पूर्वी कलीसिया के लिए प्रार्थना और सामग्री सहायता का दिन मनाया जाएगा। संत पापा ने उन सभी को धन्यवाद दिया जो अपनी प्रार्थनाओं और सामग्रियों से पीड़ितों का समर्थन करते हैं, विशेष रूप से पीड़ित यूक्रेन में। बखमुत और पूर्व के अन्य क्षेत्रों में हमलों की वृद्धि के साथ रूसी सेना और यूक्रेन की सेना के बीच भीषण लड़ाई जारी है। ऐसा अनुमान है कि फरवरी 2022 में रूस द्वारा यूक्रेन पर पूर्ण पैमाने पर आक्रमण शुरू करने के बाद यूक्रेन में 560 से अधिक बच्चों सहित कम से कम 10,000 नागरिक मारे गए हैं और लड़ाइयों के कारण लाखों यूक्रेनियन विस्थापित हो गए हैं। रूसी नुकसान के एक हालिया अनुमान में कहा गया है कि संघर्ष की शुरुआत के बाद से ही रूसी सेना को संभवतः लगभग 70,000 सैनिकों का नुकसान हुआ है। संत पापा पॉल षष्ठम हाल में मौजूद मेक्सिको से आने वाले टेलीथोन फाउंडेशन के सदस्यों को संबोधित एक निमंत्रण अपुल्को के पीड़ितों के लिए सहयोग करना है जो मेक्सिको के एक महीने से भी अधिक समय पहले तूफान ओटिस से प्रभावित हुए हैं। संत पापा ने अपील की, आइए हम फेंक दिए गए समाज के खिलाफ लड़ें, आइए हम हर व्यक्ति की गरिमा की रक्षा करें। धन्य कुंवारी मरिया के निष्कलंक गर्भाधान पर्व के दो दिन पहले संत पापा फ्रांसिस ने रेखांकित किया कि कुंवारी माता मरियम ने ईश्वर के प्रेम में विश्वास किया और उसने हाँ में जवाब दिया। हम प्रभु में उनके पूर्ण विश्वास से हर जगह सुसमाचारी या अच्छाई और प्रेम की गवाही देना सीखें। जैसा कि रोम में आगामी 2025 जयंती वर्ष के लिए तैयारी जारी है, संत पेत्रुस महागिरजाघर ने दो नई उदार परियोजनाओं की घोषणा की है जिसका उद्देश्य शरणार्थियों और कैदियों की मदद करना है। इनमें से पहली परियोजना का शीर्षक सी रोजरीज है और इसे हाउस ऑफ द स्पिरिट एंड आर्ट्स फाउंडेशन के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। शरणार्थी पृष्ठभूमि वाले दो व्यक्ति यूरोप पहुंचने के लिए प्रवासियों द्वारा उपयोग की जाने वाली नावों की लकड़ी से रोजरी माला बनाने के लिए संत पेत्रुस में काम कर रहे हैं। इसके अलावा इन मालाओं के निर्माण में कुछ प्रारंभिक कार्य पूरे इटली के विभिन्न जेलों में बंद व्यक्तियों द्वारा किया जा रहा है। दूसरी परियोजना सेकेंड चांस एसोसिएशन के साथ एक सहयोग है। यह एक गैर सरकारी संस्था है जो कैदियों और पूर्व कैदियों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए काम करती है। रोम के रेबिबिया जेल के एक कैदी को कई महीनों के लिए संत पेत्रुस महागिरजाघर में इलेक्ट्रीशियन के रूप में पूर्णकालिक नियुक्ति कर दिया गया और बितेरबो के मम्मा जाला जेल में कैदियों को बैग बनाने का काम सौंपा गया है। मंगलवार को वाटिकन में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में संत पेत्रुस महागिरजाघर के प्रधान पुरोहित कार्डिनल माउरो गम्बेत्ती ने आगामी जयंती और महागिरजाघर की नई उदार परियोजनाओं के बीच संबंधों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि मूसा के कानून के अनुसार मिस्र में गुलामी से यहूदी लोगों की बचने की याद में हर 50 साल में जुबली मनाई जाती थी। प्राचीन समय में जुबली के दासों को मुक्त करना, ऋणों को माफ करना और भूमि को उर्वरा बनाने के लिए उसे खाली छोड़ना शामिल था। महागिरजाघर की नई सामाजिक परियोजनाओं ने इन प्रथाओं की तरह एकजुटता की भावना और हर किसी को दूसरा मौका देने के सपने को बढ़ावा दिया। उधर कुवैत में कैथोलिक समुदाय अरब की माता मरिया गिरजाघर की 75वीं जयंती के साल भर चलने वाले समारोह का समापन करने वाली है। यह कुवैती धरती पर बनने वाला पहला कैथोलिक गिरजाघर है और उत्तरी अरब के प्रेरितिक विकारियट का प्रधान गिरजाघर है, जिसमें बहरीन, कतर और सऊदी अरब भी शामिल हैं। हीरक जयंती समारोह 11 दिसंबर 2022 को शुरू हुआ और शुक्रवार 8 दिसंबर को माता मरियम के निष्कलंक गर्भाधान के पर्व पर समाप्त होगा। यह विकारियट के प्रेरितिक विकर धर्माध्यक्ष आल्डो बेर्राडी की अध्यक्षता में एक समारोही धर्म विधि से सम्पन्न किया जाएगा। धर्माध्यक्ष आल्डो बेर्राडी ने फीडेस एजेंसी को बताया, इस कार्यक्रम के लिए नियोजित अन्य सभी समारोहों को सरकार ने गाजा में युद्ध पीड़ित फिलिस्तीनी लोगों के साथ एकजुटता दिखाते हुए रद्द कर दिया है। अरब की माता मरिया गिरजाघर मूल रूप से अल अहमदी में एक पुराने बिजली संयंत्र में स्थित था, जिसे 1948 में ईश्वर की मां को समर्पित एक छोटे चैपल में बदल दिया गया था। फिर 1952 में कुवैत ऑयल कंपनी ने शहर में एक नया गिरजाघर बनाने की अनुमति दी और 8 दिसंबर 1955 को संत पापा पियूस 12वें द्वारा आशीर्वादित पहला शिलान्यास पत्थर रखा गया। नए गिरजाघर को अप्रैल 1956 में अरब की माता मरियम को समर्पित किया गया था। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।